नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरिता चड्डा और मैं आपको सुनाती हूँ जिंदगी से जुड़ी कहानियाँ, कहानियाँ जिन्हें आप महसूस कर सकें। आज मैं आपको अपनी लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गुड़ गोबर। आइए सुनते हैं। एक छोटे से गांव में रहता था नंदू, बहुत मिलनसार, भाग भाग के सबकी मदद करने वाला। बस बदले में उसे चाहिए था सबका प्यार, परिवार जैसा अपनापन, ढेर सारी बातें और स्वाद भरा खाना। दरअसल नंदू का उसके गूंगे बहरे और पेशे से दर्जी कुंज बिहारी मामा के अलावा कोई नहीं था। बचपन से ही बातूनी नंदू का अपने मामा के साथ बिल्कुल मन नहीं लगता था। लगातार बोलने वाले नंदू को अपने मामा के साथ इशारों में बातें करने में कहां मजा आता भला। एक तो बातें करने का स्वाद नहीं, ऊपर से मामा के हाथों का पका बेस्वाद खाना नंदू को बिल्कुल नहीं सुहाता था। तो बचपन से ही नंदू अपने मामा के सिले कपड़ों को लोगों के घर पहुंचाने लगा और जब घर घर जाने लगा तो हरेक के घर के काम में हाथ भी बटाने लगा। जैसे कपड़े देने जाना तो किसी के यहाँ कभी मटर छील देना, कभी संतो ताई के अचार डालने में मदद करना, या फिर कभी छत पे जाके कामनी मासी के साथ पापड़ सुखवा देना, अहमद चाचा का हुक्का बनाना, बुजुर्गों की दवा दारू लाना, हकीम साहब की औषधियों को पीसने से लेकर बच्चों की नई किताबों में जिल्द चढ़ाने तक नंदू पूरे गांव का चहेता था। बच्चा है, दिल का सच्चा है, बेचारा कितना प्यारा है, कोई नहीं है उसका, कितनी मदद करता है सबकी, और बदले में अगर इधर उधर की बातें और अपने मामा के लिए पेट भर खाने को ले भी जाता है तो किसी का क्या जाता है, यही सोचकर पूरा गांव उसको अपनाने लगा। घर घर जाना, पेट भर खाना, यही करते करते नंदू बड़ा होने लगा। उसकी जिंदगी मस्त चल रही थी, मामा भी खुश थे। अब सोचिए, बिना मेहनत किए दो वक्त का स्वादिष्ट खाना किसे पसंद नहीं आएगा। ऊपर से नंदू हर दूसरे दिन अपने दर्जी मामा के लिए अपनी मुंह बोली गांव की हर मामी चाची ताई के कपड़ों को सिलने के लिए भी ले आता था। तो ओवरऑल एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट, मस्त चल रहा था नंदू जी का। यूं तो नंदू पूरे गांव में सबको बहुत पसंद था, लेकिन एक बात उसकी जो गांव में सबको बिल्कुल ना पसंद थी, वो थी उसकी बिना लगाम की जुबान, जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। भाई इतने अच्छे से नंदू सबके काम निपटाता, खाना खाता और फिर वहीं सुस्ताता, लेकिन जाते जाते अपनी जुबान की वजह से सब गुड़ गोबर कर जाता। मसलन अचार डलवाने में मदद करवाने के बाद संतो ताई का उसको ये बोल के गुड़ गोबर करना, सोचो संतो ताई, अगर तेरे अचार में चूहा गिर जाए तो मरे चूहे का अचार फेंकोगी या बांट दोगी बिना बताए। अभी बताइए इसका जवाब क्या मिलता होगा, मर जाना कमीना, निकल यहाँ से। फिर हकीम साहब की औषधियों को पीसते उसका ये कहना, अरे हकीम साहब ये बताओ, अगर आपकी औषधियों के साथ कोई मरी छिपकली भी पिस जाए तो दवाई जहर तो नहीं बन जाएगी ना। तो जाहिर है दांत पीस के हकीम साहब उसे अपने छाते से मारने दौड़ेंगे कि नहीं। फिर कहीं रहीम चाचा की नाई की दुकान में टेबल कुर्सी कांच लगाने से बैनर लगाने तक वो सब सहजता से करता और फिर यह कहकर गुड़ गोबर कर देता, ए रहीम चाचा, सोचो किसी बीमारी की वजह से सब गांव वालों के बाल उड़ जाए, सभी गंजे हो जाए, तो यहाँ बाल कटवाने कौन आएगा, आपकी दुकान तो बंद। या जरा सोचो आप ही के हुक्के से दुकान में आग लग जाए तो आप क्या करोगे। तो सोचिए रहीम चाचा ने क्या कहा होगा, उफ लाहौल विला कुवत, जा भाग यहाँ से। उस तरह कैची जो हाथ में आया उसकी ओर गुस्से में फेंक दिया। बाल बाल बचा नंदू, आज तो गंजा होते नंदू ही बच गया। तो अपनी चाकू सी तेज आरी सी चलने वाली जुबान की वजह से वो पेट भर खाने के बाद जो जी भर भर के जूते चप्पल और गालियां खाता उसकी तो कोई गिनती ही नहीं थी ना। पहले तो उसकी बेवकूफियां गांव वालों ने बर्दाश्त करी, लेकिन तब तो हद ही हो गई जब निम्मो चाची की बेटी की शादी के अवसर पर शादी से जुड़े बीसियों काम निपटा कर विदाई के बाद वो निम्मो चाची से बोला, ए चाची, सोचो अगर आपकी बेटी सुखी ना रहे या उसका पति उसको वापिस ही छोड़ जाए तो आप क्या करोगी। हे भगवान, तौबा तौबा, अब आप ही बताइए, ऐसा सुनकर कोई क्या ही करेगा। सारा गांव उसको पीटने के लिए जैसे दौड़ने लगा। अब गांव वाले शिकायत करें भी तो किससे? गूंगे बहरे मामा को कौन समझाए नंदू किस कदर बेलगाम बोलता है। वह सब कुछ अच्छे से करके फिर कैसे गुड़गोबर कर देता है। उसकी बेबुनियाद फालतू सोच और तकलीफ दे बातें सबका कितना दिल दुखाती है, किसी आरी की तरह दिल को चीर जाती है। आखिरकार नंदू के मामा ने रोज रोज हैरान परेशान करने वाली गांव वालों की शिकायतों से, गाली गलौज से मुक्ति पाने के लिए नंदू को गांव से दूर एक पहचान वाले के चीनी के कारखाने में लगवा दिया कि शायद अब नंदू चीनी फैक्ट्री में रहकर थोड़ा मीठा बोलना सीख जाएगा, कि उसकी कड़वी जुबान में थोड़ी सहजता भरी मिठास आ जाएगी। खैर, नंदू जैसे तैसे चीनी फैक्ट्री में काम करने लगा, पर अब उसको रहने और खाने की तकलीफ सताने लगी। तो किसी फैक्ट्री के मजदूर साथी ने उसे बताया कि पास वाले गांव में कोई निर्माताई है जिसका बेटा भीम पिलासी एक पहलवान है, जो पहलवानी के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए अक्सर घर से बाहर रहता है, तो शायद एक सशुल्क अतिथि की तरह यानी पेइंग गेस्ट की तरह निर्माताई उसे रख सकती है। ये विचार उसे अच्छा लगा, तो उसने सोच समझ के पता लगाया कि निर्माताई जो घर में एक किराने की दुकान लगाती है और अक्सर सामान खरीदने वो सोमवारी बाजार आती है, तो उसने एक दिन सोमवारी बाजार में लपक के निर्माताई के हाथ से उसका सामान से भरा थैला पकड़ लिया और बोला, निर्माताई मैं नंदू आपके बेटे जैसा हूँ, इतना सामान आपको उठाते देखा तो सोचा आपकी मदद कर दूं। निर्माताई अचानक से इस तरह से थैला खींचने वाले को कैसे बर्दाश्त करती, तो वो तुनक के बोली,
अरे कौन है रे तू, पहले तो कभी तुझे देखा नहीं, ऐसे कैसे सामान पकड़ा दूं, चल हट।
तो अब नंदू अपने बातूनी अंदाज में फुसलाना शुरू हो गया। बोलने लगा,
निर्माताई इधर चीनी मिल में काम करता हूँ, मेरा अपना गूंगे बहरे मामा के सिवा कोई भी नहीं, यहाँ अकेला कहाँ जाऊँ, तो मैंने सोचा आपके यहाँ रह लूंगा, मेरी माँ जैसी हो आप, तो आपके सारे काम निपटा दिया करूँगा, आपके बेटे से भी बढ़कर आपकी सेवा करूँगा, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपके साथ एक सशुल्क अतिथि की तरह रह सकता हूँ।
अब थोड़े नकली नखरे और आनाकानी करने के बाद कमाई और मदद का सोचकर निर्माताई नंदू को सशुल्क अतिथि की तरह रखने के लिए तैयार हो गई। तो फिर रास्ते में ही नंदू कहाँ चुप बैठने वाला था, उसकी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। मुस्कुराकर थोड़ा खिसिया कर नंदू बोला,
शुक्रिया शुक्रिया निर्माताई, यूँ बताओ कि आपको सब निर्माताई क्यों बुलाते हैं।
तो निर्माताई हंसते बोली,
अरे ये चीनी मिल के मजदूर है ना, मुझसे वो निर्मा वॉशिंग पाउडर ले जाते हैं, तो बस पड़ गया मेरा ये नाम निर्माताई। असल में तो मेरा नाम सुशीला है।
हंसते हंसते बातें करते दोनों घर पहुंच गए और नंदू ने अपना जादू चला दिया, पूरा घर साफ कर दिया। बूढ़ी हो चली निर्माताई को ना दिखने वाले घर के सारे जाले हटा दिए, टूटे चाय के बर्तन के हैंडल जोड़ दिए, कुकर का ढक्कन ठीक कर दिया, महीनों की धूल मिट्टी भरी पानी की टंकी भी साफ कर दी और पानी लबालब भर दिया, और फिर मंजी बिछा के निर्माताई को बैठने को बोला और उनके पांव दबाने लगा। भाई ये सब करने में तो अपने नंदू का कोई जवाब ही नहीं था।
तेरे पांव में मेरी दुनिया निर्माताई।
ऐसा प्यार, ऐसा दुलार और ऐसे प्यारे गीत अपने खुद के पहलवान पुत्र भीम पिलासी ने भी ना गाए थे कभी निर्माताई के लिए, तो जाहिर है निर्माताई तो खुशी में ऐसी इमोशनल हुई कि उसे दूसरे बेटे की तरह प्यार से रखने लगी। उसे तरह तरह के पकवान खिलाती, देसी घी का हलवा, बारिश में मालपूड़े, कभी पकोड़े तो कभी जलेबी, अपना भरपूर प्यार नंदू पर निर्माताई लुटाने लगी। नंदू अब चीनी मिल की नौकरी छोड़ पूरी तरह से निर्माताई की सेवा में लग गया। अब नंदू निर्माताई की किराने की दुकान से लेकर मकान भी संभालने लगा। निर्माताई अब वक्त निकाल कर खुशी खुशी सत्संग भी जाने लगी। ऐसे कुछ 3-4 हफ्ते बीत गए, सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक निर्माताई का पहलवान पुत्र भीम पिलासी अपने भारी भरकम शरीर के साथ घर में वापस आया। जाहिर है उसे ये नया चेहरा नंदू बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, पर नंदू तो अपनी चापलूसी के लिए माहिर था। नंदू ने जमा के पहलवान के शरीर पर करी तेल मालिश तो बड़े से कठोर पहलवान का कोमल सा दिल भी चुटकियों में जीत लिया। निर्माताई का घर कहने को तो बहुत बड़ा था, लेकिन घर का दरवाजा थोड़ा छोटा था। पहलवान को थोड़ा आड़ा तिरछा होकर नीचे झुककर अंदर जाना पड़ता था। थोड़ी मुश्किल होती थी, पर अब क्या करें, नए दरवाजे को लगवाने के लिए घर की मरम्मत करवानी पड़ती। और निर्मा ताई ठहरी कंजूस और बहुत ही सुस्त, रोज आजकल पे टाल देती और बोलती, ए नंदू, कुछ दिन की बात है, अभी फिर ये महीने के लिए चला जाएगा, दिवाली से पहले जरूर करवा लेंगे। अरे अब तो तू भी है मेरी मदद के लिए नंदू, चल बता आज क्या खाएगा मीठे में। अब नंदू और निर्मा ताई के चलते भीम पिलासी को कहां पड़ी थी कुछ भी करने की, तो वो पूरा दिन खा पी के सुस्ताता रहता और इतना लंबा सोता कि पूछो ही मत। एक दिन इसी तरह खा पी के पूरे 24 घंटे से भीम पिलासी अंदर सुस्ता रहा था और निर्मा ताई नंदू के कहने पर उसके लिए रसोई में गर्मा गर्म खीर बना रही थी। तो अचानक नंदू बोला, ए ताई, पहलवान भाई बहुत देर से सो रहे हैं, सब ठीक है ना? निर्मा ताई के माथे पे बल पड़ गए, एकदम बोली, है मतलब? अरे वो कुंभकर्ण की तरह अक्सर 24 से 36 घंटे तक सो सकता है, अरे ये कोई नई बात ना है। नंदू फिर बोला, पर मैं नू सोच रहा था कि कहीं अगर सोते सोते पहलवान भाई निकल लिए तो इन्हें ये छोटे किवाड़ से बाहर कैसे लिवाएंगे। मतलब शरीर तो उन्होंने बढ़ा लिया, बाकी कंधा देने वाले भुगतेंगे। क्यों है ना निर्माताई? अब निर्माताई को तो मानो काटो खून नहीं, ये किस सपोले को इसने घर पे रख लिया था। उसकी ऐसी मनहूस बात सुन निर्माताई ने उस अधपकी उबलती खीर को उसी वक्त एक पोटली में डाला, उसका सामान भार फेंका और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकाल दिया।
नंदू कहां से आ
गया? पीछे से काफी देर उसके बुड़बुड़ाने की आवाज आती रही और नंदू आगे चलता रहा। नंदू को अब होश आया कि कैसे उसने बसे बसाए बने बनाए घर और जिंदगी से फिर से अपनी आरी जैसी तेज जुबान से फिर से गुड़गोबर कर दिया था। कांधे पे लाठी और लाठी से लगी पोटली से खीर टपक टपक टप टप गिर रही थी और लोग उससे रास्ते में पूछ रहे थे, उसे आगाह कर रहे थे, ये संभालो भैया, कुछ टपक रहा है तुम्हारी पोटली में, ये तुम्हें पता है तुम्हारी पोटली में कुछ टपक रहा है। नंदू ने किसी की तरफ नहीं देखा, बस आंखों में आंसू संभालते हुए यही बोल सका, भाई ये मेरी बेलगाम जुबान का रस है जो टपक रहा है और मैं उसे किसी अर्थी की तरह कांधे पे ढो के चल रहा हूं। तो इतनी सी थी आज की ये कहानी दोस्तों। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, सोच समझ के बोलो, तोल मोल के बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। कोई कटाक्ष शब्द जो दूसरे के दिल को चीर दे, ऐसी बातें कभी भी मुख से मत निकालिए। जुबान से निकले शब्द कमान से निकले तीर से होते हैं जो कभी वापस नहीं आते। रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छूट जाते हैं, तो मीठा बोलिए, जुबान को संभाल के बोलिए। गुड़ गोबर करने में क्या है, 2 मिनट ही तो लगते हैं, किंतु रिश्ते बनाने में सालों साल लग जाते हैं। तो दोस्तों खुश रहिए, चलते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सुनते रहिए।